أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ہمارے کارکن میں سبھی درشکوں پیارے دوستوں آپ سبھی کو ایک بار پھر میرا پیار بھرا سلام ہمارے آج کے کاریکرم کا شیرشک ہے اعتکاف ہم اعتکاف سے سمبندھت مسئلوں کو آج آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلا پرشن جو اس سمبندھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کا ارتھ کیا ہے یا اعتکاف کسے کہتے ہیں اگر اعتکاف کو ہم دیکھیں تو اعتکاف ایک مستحب عبادت ہے جس کا ارتھ یہ ہے کہ انسان ایشور کی اپاسنا یا اللہ کی عبادت کی نیت سے کچھ دن جو وشیش ان کی گنتیاں ہیں اور وشیش شرطیں ہیں اپنے آپ کو مسجد میں روکے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرائے یا مسجد میں ٹھہرے یہ ہے اعتکاف کا ارتھ اس کی کچھ وشیش شرطیں ہیں کہ اگر ان شرطوں کو انجام نہ دیا جائے ان شرطوں کا پالن نہ کیا جائے تو ایک ویکتی کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے آوشک یہ ہے کہ ان شرطوں کا پالن اوشی کیا جائے سب سے پہلی شرط جو اعتکاف کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکتی اعتکاف کر رہا ہے وہ بالغ اور عاقل ہو نابالغ یا پاگل یا جن کی مینٹل استھتی صحیح نہیں ہے ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز جو تقریباً ہر عبادت میں شرط ہے وہ یہ ہے اور وہ اعتکاف میں بھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اعتکاف پہ جا رہا ہے تو خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ اعتکاف پر جائے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اعتکاف نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو تیسری شرط ہے کہ آوشک ہے کہ انسان اگر اعتکاف کر رہا ہے تو اس کا پالن کرے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم اودھی 3 دن ہے یعنی کم سے کم 3 دن ایک ویکتی مسجد میں ٹھہرے تبھی اس کا اعتکاف کہلائے گا اگر اودھی 3 دن سے کم ہے تو وہ اعتکاف نہیں ہے اس کے بعد چوتھی شرط جو یہ ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرے مسجد کے اتریت کسی اور استھان پر اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے اگر اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور کیا جا رہا ہے تو یہ اعتکاف باطل ہوگا اعتکاف نہیں کہلائے گا اس کے بعد کی شرط جو اعتکاف کے لیے آوشک ہے وہ یہ ہے کہ جس سمے انسان اعتکاف کر رہا ہے اور مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے اگر بنا کسی کارن کے مسجد کے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اور شرط جس کا دھیان رکھنا آوشک ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اعتکاف صحیح ہو تو جتنی مدت بھر جتنی اودھی بھر اعتکاف کر رہا ہے کہ جس کی کم سے کم اودھی 3 دن ہے ان تینوں دن کم سے کم ان تینوں دن روزہ اوشی رکھے اگر انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں کہلائے گا اس کے بعد ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وشیش لوگوں کے لیے یہ ہے وہ وشیش لوگ کون ہیں ان کو ہم آگے بیان کریں گے کہ اعتکاف کے لیے انسان انومتی اور اجازت لے سمبندھت ویکتی سے جو سمبندھت لوگ ہیں جن کو ہم آگے اپنے کاریکرم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتایا کہ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت ہو تو یہ آپ جان لیجئے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادتوں کے بارے میں کہا گیا ہے سب میں اس بات کی شرط رکھی ہے کہ جس سمے انسان وہ عبادت انجام دے رہا ہے اس کی نیت اللہ کے لیے ہو یعنی وہ ایشور سے قریب ہونے کی نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے یہی چیز اعتکاف میں بھی شرط ہے اب اگر انسان ریاکاری یا دکھاوے یا اپنے آپ کو شریشٹھ اور بڑا دکھانے کے لیے اعتکاف یا کسی عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس کی وہ عبادت اور اعتکاف باطل ہے یا صحیح نہیں کہلائے گا اس کے بعد اعتکاف میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے یعنی سوئم جائے نیت کرے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں قربت اللہ یعنی زبان سے یا دل سے یہ اپنے آپ کی طرف سے نیت کر سکتا ہے سوئم نیت کر سکتا ہے سوئم اپنا اعتکاف کر سکتا ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی اعتکاف کر سکتا ہے जो व्यक्ति दूसरे की तरफ से एतिकाफ़ करता है उसको एतिकाफ़े नियाबती कहा जाता है। लेकिन इसमें जब एतिकाफ़े नियाबती जो कहते हैं यानी दूसरे की तरफ से किया जाना वाला एतिकाफ़, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक ही एतिकाफ़ को कई लोगों की तरफ से नहीं किया जा सकता है। यानी अगर एतिकाफ़ करना चाहता है मसलन अपने बाप की तरफ से भी कर ले, अपने दादा की तरफ से भी कर ले, अपनी माँ की तरफ से भी कर ले, एक ही एतिकाफ़ में सबकी तरफ से, तो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है वो ये कि एतिकाफ़ स्वयं करे और अपने एतिकाफ़ के सवाब को सबको हदिया कर दे, सबको भेंट कर दे, ये हो सकता है। लेकिन एक ही एतिकाफ़ में कई लोगों की तरफ से एतिकाफ़ नहीं किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ हुई जो नियत से संबंधित थी। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि एतिकाफ़ की अवधि क्या हो, कितने समय भर, कितनी मात्रा में, कितने दिनों तक एतिकाफ़ किया जाए तो एतिकाफ़ सही होगा। तो उसके बाद इसमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि एतिकाफ़ की कम से कम अवधि 3 दिन है। यानी 3 दिन से कम अगर 2 दिन या 1 दिन या 1.5 दिन को एतिकाफ़ करना चाहे तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं है। कम से कम 3 दिन एतिकाफ़ करना, यानी 3 दिन मस्जिद में ठहरना वाजिब है, तभी एतिकाफ़ सही माना जाएगा, वरना एतिकाफ़ सही नहीं होगा। ये तो कम से कम अवधि भी। लेकिन अब ज़्यादा में क्या, अगर कोई व्यक्ति चाहे ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा की हमारे फुकहा ने कोई लिमिट नहीं बताई है कितने दिन तक करे, इसकी कोई अवधि बयान नहीं की है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इंसान 3 के बाद 5 दिन की अवधि भर एतिकाफ़ कर लेता है तो उसके बाद उसको छठे दिन रुकना वाजिब है। ये 3 दिन के बाद अगर समाप्त कर दे, समाप्त कर दे, चौथे दिन समाप्त करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अगर 5 दिन रुक गया है तो उसके बाद छठे दिन उसके ऊपर रुकना वाजिब है और कम से कम 6 दिन तक एतिकाफ़ पहुँचाना उसके ऊपर वाजिब है। उसके बाद अगर मसलन 6ठे दिन के बाद उसने 2 दिन और रुक गया तो उसके ऊपर वाजिब है कि 9वें दिन भी रुके। यानी इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि अगर 3 दिन पूरा होने के बाद 2 दिन और रुक जाता है, यानी हर 6 के बाद 2 दिन, 8 के बाद 2 दिन, इस प्रकार अगर 2-2 दिन और बढ़ा देता है तो हर 2 दिन के बाद उसके बाद वाजिब हो जाता है कि 3रे दिन भी ठहरे। यानी 2 दिन बढ़ाता है तो 3रे दिन उसके ऊपर ठहरना एतिकाफ़ के सही होने के लिए वाजिब होगा। और उसके बाद एतिकाफ़ किस समय से आरंभ होता है, तो एतिकाफ़ के आरंभ होने का समय यह है कि इंसान फज्र जब तुलू होती है यानी सुबह की अज़ान का जो समय होता है उस समय से आरंभ होता है और 3रे दिन की मग़रिब के समय तक ये रहता है। यानी इतनी अवधि भर, इतनी मुद्दत भर इंसान को मस्जिद में रहना अनिवार्य है एतिकाफ़ के सही होने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इंसान तुलुए फज यानी सुबह की नमाज के समय के अगर 1 मिनट के बाद भी मस्जिद में पहुँचता है तो उसका वो दिन एतिकाफ़ में जोड़ा नहीं जाएगा, उसका वो दिन एतिकाफ़ में शामिल नहीं होगा। चाहे वो ये सोच ले कि हम आगे बढ़ा देंगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 1 मिनट भी लेट पहुँचता है मस्जिद में तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं है। उसके बाद एतिकाफ़ कम से कम जो है 3 दिन का हो, यानी जिसमें कम से कम 2 रातें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि और इन 3 दिनों में इंसान मस्जिद के अंदर रहे, यानी मतलब ये हुआ कि जो 2 रातें गुजर रही हैं, कम से कम 2 रातें गुजरेंगी बहरहाल, कि जो 2 रातें गुजर रही उन रातों में भी उसको मस्जिद ही में रहना होगा, वो अपने घर नहीं जा सकता है। अगर रातों में मस्जिद को छोड़ के घर चला जाता है तो उसका एतिकाफ़ फ़ौरन बातिल हो जाएगा, एतिकाफ़ उसका सही नहीं होगा। उसके बाद मुस्तहब एतिकाफ़ को छोड़ना और ऐसा एतिकाफ़ जिसके लिए नज़र की है लेकिन कोई विशेष दिन मुशख्खस नहीं किया है, तो अगर एतिकाफ़ छोड़ना चाहता है तो पहले और दूसरा दिन जो है एतिकाफ़ का उसमें अगर एतिकाफ़ को छोड़ के उठ के जाना चाहता है, एतिकाफ़ की नियत समाप्त करना चाहता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। लेकिन अगर 2 दिन ठहर चुका है, पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर 3रे दिन रुकना वाजिब हो जाएगा, 3रे दिन से पहले वो एतिकाफ़ को नहीं तोड़ सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि आपका एतिकाफ़ की समय सीमा क्या है, किस समय से किस समय तक इसको एतिकाफ़ में रहना होगा। उसके बाद कौन से दिन हैं जिनमें एतिकाफ़ करना चाहिए। हमने बताया कि आपका कम से कम 3 दिन एतिकाफ़ किया, लेकिन क्या कोई विशेष महीना है, क्या कोई विशेष दिन है जिनमें एतिकाफ़ करना चाहिए। तो एतिकाफ़ के लिए कोई विशेष दिन, कोई विशेष महीना बयान नहीं किया गया है, बल्कि कहा गया साल के किसी भी महीने में एतिकाफ़ किया जा सकता है। लेकिन रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ करने की फजीलत ज़्यादा है, सवाब ज़्यादा है और विशेषकर रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ का सवाब बहुत ज़्यादा है, उन दिनों में एतिकाफ़ करना चाहिए एक मुसलमान व्यक्ति को। उसके बाद जब हमने बताया कि ये ज़मान हो गया तो कहाँ पर एतिकाफ़ करे, एतिकाफ़ का स्थान क्या होना चाहिए, किस जगह पर एतिकाफ़ करे, कहाँ बैठे इंसान एतिकाफ़ के दिनों में, तो उसके लिए कुछ स्थान बताए हैं हमारे फ़ुकहा ने, जैसे कि मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद कूफा और मस्जिद बसरा। ये वो मस्जिदें हैं जहाँ पर इंसान को एतिकाफ़ करना चाहिए। इन 4 मस्जिदों के अलावा हर शहर की जामे मस्जिद में एतिकाफ़ किया जा सकता है। उसके अलावा यानी जामे मस्जिद में एतिकाफ़ किया जा रहा है तो इस नियत के साथ अगर एतिकाफ़ किया जाए कि ईश्वर से सवाब की आशा की नियत के साथ, जिसको हम कसदे रजा कहते हैं, अगर एतिकाफ़ किया जाए तो शहर की जामे मस्जिद में भी एतिकाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो जामे मस्जिद है उसके अलावा दूसरी मस्जिदों में क्या एतिकाफ़ हो सकता है नहीं, तो हमारे फुकहा कहते हैं दूसरी आम मस्जिदों में एतिकाफ़ करना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ फुकहा दूसरे तरह का फतवा देते हैं, जैसे हमारे आयतुल्लाह खामनई कहते हैं कि जामे मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिदों में भी एतिकाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है, एतिकाफ़ सही होगा। और आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं, वो जामे मस्जिद की शर्त लगाते हुए कहते हैं कि अगर जामे मस्जिद जहाँ पर एतिकाफ़ करना चाहता है उसका इमाम जो वहाँ नमाज़ पढ़ा रहा है आदिल है तो उस मस्जिद में एतिकाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आदिल नहीं है तो वहाँ पर इंसान को एतिकाफ़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब हमने ये बयान कर दिया कि एतिकाफ़ शहर की जामे मस्जिदों में भी हो सकता है, तो अगर कोई शहर ऐसा हो जहाँ एक के अलावा कई प्रकार की जामे मस्जिदें, यानी 3, 4, 5 जामे मस्जिदें हों, बड़ा शहर हो, कई जामे मस्जिदें हैं, तो किस मस्जिद में एतिकाफ़ किया जाए, तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं जितनी भी जामे मस्जिदें हैं सब में एतिकाफ़ किया जा सकता है, किसी भी मस्जिद में वो चाहे वो जा सकता है, वहाँ 3 दिन कम से कम एतिकाफ़ कर सकता है। लेकिन अगर इंसान अपने घर में, इमामबाड़े में, या कोई ऐसा स्थान जिसको नमाज़ के लिए बनाया गया हो, मस्जिद ना हो सिर्फ नमाज़ के लिए बनाया हो, इन जैसे स्थानों पर अगर एतिकाफ़ करना चाहे तो इन जैसे स्थानों पर एतिकाफ़ सही नहीं है। एतिकाफ़ के लिए शर्त यह है कम से कम वो मस्जिद में जाकर बैठे। और उसके बाद शर्त यह है कि जब मस्जिद में जाकर बैठ रहा है तो एतिकाफ़ एक मस्जिद में किया जाए। मसलन अगर शहर की जामे मस्जिद को चुना है तो एक जामे मस्जिद में जाके बैठे, अगर मस्जिद नबी में बैठा है तो मस्जिद नबी ही में जाके बैठे। यानी ऐसा नहीं कर सकता मसलन एक दिन इस मस्जिद में जाके बैठे, एक दिन दूसरी मस्जिद में जाके बैठे, एक दिन यहाँ बैठे, एक दिन वहाँ बैठे, ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि किसी एक ही मस्जिद में उसको बैठना होगा और उसी में अपने एतिकाफ़ को पूरा करना होगा। अगर अलग अलग मस्जिदों में जाता है उसका अलग अलग मस्जिदों में जाना एतिकाफ़ को बातिल करने का कारण बनेगा और उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। उसके बाद जो मसले पेश आते हैं कि क्या इंसान जब एतिकाफ़ कर गया है, जब मस्जिद में बैठ गया है, तो क्या मस्जिद से बाहर निकल सकता है नहीं, यानी क्या उसके ऊपर उसको बैठा के हमेशा के लिए ताला लग जाएगा, 3 दिन के लिए बाहर नहीं निकल सकता, या निकल सकता है अगर कुछ कारण हो तो निकल सकता है। तो सबसे पहला स्थान जहाँ पर वो इंसान मस्जिद से बाहर निकल सकता है वो ये है कि अगर इंसान को अदालत में किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में गवाही देना हो तो इंसान इस गवाही को देने के लिए मस्जिद से एतिकाफ़ की हालत में भी निकल सकता है बाहर। दूसरा, अगर किसी का अंतिम संस्कार हो और वो जो मर गया है व्यक्ति, जो मृत व्यक्ति है, वो ऐसा है कि जिसका इस एतिकाफ़ करने वाले व्यक्ति से सामाजिक या धार्मिक तौर से ऐसा रिश्ता है कि अगर वो ना जाए तो लोग बुरा समझें, तो अगर ऐसा है तो उसके अंतिम संस्कार या उसकी तशिया जनाजा में भी इंसान एतिकाफ़ की स्थिति में भी जा सकता है, नहीं एतिकाफ़ की स्थिति में मस्जिद से बाहर इस कार्य के लिए निकल सकता है। उसके अलावा हर वो कार्य, चाहे वो शर्ई हो या सामाजिक हो, चाहे वो दुनियावी हो चाहे दीनी हो, अगर वो कार्य आवश्यक है तो उसके लिए भी वो मस्जिद से निकल सकता है और इससे उसके एतिकाफ़ के सही होने के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, उसका एतिकाफ़ सही होगा। उसके बाद अगर इंसान मस्जिद में था, मुजनिब हो जाए, अगर मुजनिब हो जाता है तो गुस्ल जनाबत करने के लिए भी मस्जिद से निकल सकता है, बल्कि जिसे कहा जाए कि मस्जिद से निकलना वाजिब हो जाता है उसके ऊपर। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति एतिकाफ़ की स्थिति में किसी कारण से मस्जिद से बाहर निकले तो उसके लिए आवश्यक यह है कि जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखे, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना उसके लिए आवश्यक है। पहली तो चीज़ ये है कि जितनी ज़रूरत हो जितनी मात्रा में उसके लिए निकलना वाजिब है, सिर्फ उतना ही निकले। मसलन अगर गुस्ल जनाबत करने के लिए जा रहा है तो गुस्ल जनाबत करे और तुरंत मस्जिद में वापस आ जाए। गवाही देने जा रहा है तो गवाही देने जाए और तुरंत मस्जिद में आ जाए। अंतिम संस्कार में गया तो जैसे ही अंतिम संस्कार की क्रियाएँ पूरी हों वैसे ही वो मस्जिद में वापस चला आए। यानी जितना कार्य है केवल उतनी ही मात्रा में मस्जिद से बाहर रहे। और दूसरी चीज़ कि जहाँ तक संभव हो जिस समय वो मस्जिद से बाहर निकला है वो साए में ना बैठे। जहाँ तक संभव है वो ये प्रयत्न करे कि साए से दूर रहे, बल्कि किसी चीज़ को अपने सर पे न रखे, मतलब छाता जैसी चीज़ें अपने सर पे न रखे या किसी शेड के नीचे वो ना जाए। और एहतियात वाजिब ये है कि जिस समय वो मस्जिद से निकल रहा है किसी आवश्यक कार्य से, मसलन वो गवाही देने जा रहा है, तो उस रास्ते का चुनाव करें जो रास्ता सबसे छोटा हो, जिस रास्ते से सबसे जल्दी पहुंच सकता है अपने लक्ष्य तक, अपने स्थान तक, उस रास्ते का चुनाव करें, उस रास्ते से जाए। और अगर इसमें अगर निकल गया यानी मस्जिद से बाहर जाता है किसी कारणवश, किसी कार्य से जाता है, अब अगर इंसान मस्जिद से बाहर निकला है और मस्जिद से बाहर निकलने पर इतनी ज़्यादा देर हो जाए उसको वापस पलटने में कि देखने वाले ये ना कहें कि ये मोतकिफ था, इसने एतिकाफ कर रखा था। अगर एतिकाफ की सूरत बिगड़ जाती है बहुत देर तक बाहर निकलने के कारण, तो ये बाहर निकलना उसके एतिकाफ को बातिल कर देगा, भले ही वो किसी आवश्यकता से ही वो मस्जिद से बाहर क्यों ना निकला हो। अगर इंसान भूले से मस्जिद के बाहर निकल जाए, जैसा कि हमने बताया कि एतिकाफ की अवधि पर इंसान को मस्जिद से बाहर नहीं निकलना है, अब इंसान ये भूल जाए कि वो एतिकाफ की स्थिति में था, भूल के मस्जिद से बाहर निकल गया, तो ये भूल के मस्जिद से बाहर निकलना उसके एतिकाफ के बातिल होने का कारण नहीं बनता है। लेकिन उसके ऊपर वाजिब ये है कि जैसे ही उसको याद आता है कि वो एतिकाफ किए हुए था तुरंत वो मस्जिद से बाहर आ जाए। तो ये वो चीज़ें थी जो एतिकाफ से संबंधित थी, हमने आपके सामने बयान किया। हमने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपके सामने एतिकाफ की व्याख्या की कि एतिकाफ कहते किसे हैं, एतिकाफ की शर्तें बताई, किस समय किया जाएगा और कौन से ऐसे स्थान हैं जिन पर एतिकाफ़ किया जा सकता है। इसके बाद वाले कार्यक्रम में इंशाल्लाह एतिकाफ़ में जो रोज़े रखे जाते हैं उनसे संबंधित मसले और कुछ और मसलों को बयान करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के हवाले करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।